ओम शांति।
बहुत बहुत समय पहले किसी एक सम्राट के पास एक प्रश्न ने घर कर लिया। प्रश्न ये था कि उसके 3 बेटे थे और उसे ये निर्णय करना था कि राज्य किसे दिया जाए। वो बीमार था, कैसे निर्णय करे। एक फकीर उस राज्य में आया, तब सम्राट ने उसके सामने अपनी समस्या रखी और फकीर ने एक हल सुझाया। राजा ने तीनों ही राजकुमारों को बुलाया, तीनों को ही 100-100 रुपए दिए और कहा कि तुम तीनों का अपना अपना जो भवन है, महल है, उस एक एक महल को इन पैसों से जो चीज लेना चाहो वो ले लो, परंतु महल पूरा भरना चाहिए। एक एक राजकुमार का महल बहुत बड़ा था। पहले राजकुमार ने सोचा 100 रुपए में क्या होता है, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जुआ खेलूं और जो अधिक धन मिलेगा उस अधिक धन से राजमहल को हीरे जवाहरातों से भर दूं। नहीं तो इतने कम पैसों में भरना असंभव है। दूसरे राजकुमार ने सोचा कि मैं इतने कम पैसे का क्या करूं, और इतने कम पैसे में आता भी क्या है। बहुत सोचा, इस निर्णय पर पहुंचा कि बहुत सारी कीचड़ पट्टी सस्ते में इससे मिल सके, क्योंकि शर्त है राजमहल को भरना है, चाहे किसी भी वस्तु से भर दो। तो उसने शहर के बाहर जो कीचड़ा था वो खरीद लिया, वो घास फूस थी वो खरीद ली और उससे अपने महल को भर दिया। तीसरे बेटे ने भी कुछ किया। निश्चित तारीख आई, राजा स्वयं निरीक्षण करने आया। पहले राजकुमार के महल को देखा, उसमें कुछ भी नहीं था क्योंकि वो जुए में सब कुछ हार चुका था, जो भी पैसे 100 रुपए उसे दिए गए थे। और उसने अपनी हार स्वीकार भी कर ली कि मैं क्या करूं, मैं हार गया। दूसरे राजकुमार के महल में गए तो वहां पर दुर्गंध थी, क्योंकि सारा महल ही कीचड़े से भरा हुआ था और उसके साथ साथ अब उसमें दुर्गंध आने लगी थी। तीसरे राजकुमार के घर भी राजा पहुंचे और देखा वहां दिव्य प्रकाश है। और राजा ने पूछा कि राजकुमार, तुमने अपने घर को किससे भरा? और उस राजकुमार ने कहा कि मैंने इस महल को प्रकाश से भर दिया है, आलोक से भर दिया है, क्योंकि इतने कम पैसे में और आ ही क्या सकता था, परंतु जिससे भरा है वो ऐसा है कि उसकी तुलना और किसी से की नहीं जा सकती। और वह तीसरा राजकुमार सम्राट बन गया। हमने अपने जीवन के महल को किससे भरा है? अगले 3 दिनों में हरेक को अपने आप से ये प्रश्न पूछना है, क्या किया है मैंने जीवन रूपी इस महल का? क्या जीवन के इस महल का मैं सम्राट बन सकूंगा? कहीं गवा तो नहीं दिया? कहीं जो भरा है वो व्यर्थ तो नहीं, वो किचड़ा तो नहीं, वो घृणा नफरत तो नहीं, जो द्वेष और ईर्ष्या तो नहीं? किससे भरा है? क्या ज्ञान के प्रकाश से भरा है? क्या ज्ञान के आलोक से भरा है? उस तीसरे राजकुमार का वह महल सुगंध से भरा था, जगह जगह पर फूल लगे हुए थे। क्या जीवन रूपी यह महल ज्ञान के प्रकाश से और खुशी के सुगंध से हमने भरा है। हर एक को अपने आप को देखना है, अपने आप से प्रश्न पूछना है कि जिससे मैंने अपने जीवन को भरा है वो क्या है। यदि जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है, दर्द है, व्याधि है, तो शायद जिससे भरा है वो प्रकाश नहीं, वो आलोक नहीं, वो कुछ और है, वो है जो नहीं होना चाहिए था। और नियति ने यह अवसर दिया है और भाग्य ने यह अवसर दिया है कि आप सब यहाँ आए हैं स्वयं का निरीक्षण करने, स्वयं को समझने, स्वयं को जानने। जिस स्थान पर आप इस समय बैठे हैं, परमात्मा प्रकंपन से ओतप्रोत यह स्थान है, प्रचंड ऊर्जा का स्पंदन यहाँ हो रहा है, असंख्य योगियों की तपस्वी भूमि यह स्थान है। दिस इज द प्लेस विथ वेरी हाई स्पिरिचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इस स्थान पर आकर अपने आप को देखना है, समेटना है खुद को, अपने जीवन को। तो सभी स्थिर होके बैठ जाएंगे, रेड लाइट, सभी स्थिर, योग का एक प्रयोग करेंगे और फिर क्लास की शुरुआत होगी। संपूर्ण ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। वायुमंडल अव्यक्त, शरीर की सारी हलचल समाप्त, मन शांत, बुद्धि एकाग्र, देह के भव्य भाल पर विराजमान। मैं एक दिव्य ज्योति हूं। आज से और अगले 3 दिन तक मुझे एक खोज करनी है, स्वयं की खोज। उतरना एक गहरे मौन में, अंतर्मुक्ता की गुफा में, भीड़ में एकांत में, स्वयं की खोज। मैं कौन, क्या कर रहा हूं, जीवन के इस महल को किससे मैंने भरा है, क्यों अंधकार, क्यों ये दर्द, क्यों ये पीड़ा, क्या इस महल को ऐसे दिव्यालोक से भरा जा सकता है कि उसके बाद जीवन जीवन के प्रत्येक दृश्य में खुशी की अलौकिक धारा बहने लगे। इसी की खोज, स्वयं का अन्वेषण, स्वयं के अस्तित्व को जानना है मुझे। धन्यवाद उन सभी आत्माओं का, उन सभी लोगों का जो मुझे यहां तक ले आए। ओम शांति। वर्तमान समय डिजिटल युग चल रहा है और जब भी कोई भी चीज हमें चाहिए होती है, खोजने होती है, तुरंत हम इंटरनेट का आधार लेते हैं, अंतरजाल, परंतु शायद उसका आधार लेते लेते संसार के कई लोग और कई युवक उसी की गिरफ्त में आकर गिरफ्तार हो चुके हैं, बंध गए हैं। हम सोच रहे थे सुबह, गूगल गाइज, दो व्यक्तियों को कहा जाता है, दो नौजवान 35 वर्ष शायद जब उनकी उम्र होगी 98, लैरी पेज और ब्रिन, दोनों ने पहली बार सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि विश्व में जितना भी ज्ञान है वो सारा एकत्र किया जाए और सारे विश्व के लिए उपलब्ध किया जाए सहज रीति से। संकल्प बहुत शुद्ध था, इंटेंशन बहुत प्योर थी, इसलिए साकार हो गई। और 2004 से जिसे हम गूगल कहते हैं वो कार्य में आया। ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें कुछ भी डालो संपूर्ण जानकारी हमें मिल जाती है। अगस्त 2013 में 2 से 4 मिनट के लिए गूगल बंद हुआ था और देखा गया 40% इंटरनेट ट्रैफिक ड्रॉप हो गया। आज हम उस गूगल की बात नहीं करने वाले। क्या खुशी का भी ऐसा कोई गूगल है? क्या ऐसा कोई डिवाइन गूगल भी है कि वो यदि हमें मिल जाए तो जीवन आनंद से भर जाए, उमंग से भर जाए, पुलक से भर जाए, जीवन में जो दुख है, संताप है, पीड़ा है, दर्द है, व्याधि है वो ना रहे। तो आज हम ऐसे ही एक गूगल की चर्चा करेंगे जिसे हमने कहा है द डिवाइन गूगल ऑफ हैप्पीनेस। और ये गूगल कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। एक भिखारी था कभी, 25 वर्ष तक एक स्थान पर बैठकर वो भीख मांगता रहा। उसका स्वप्न था कि मैं बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाऊं, पर कभी बन नहीं पाया, भीख ही मांगता रहा सुबह से लेकर रात तक, और एक स्थान पर। और एक दिन वह मर गया। शहर के लोगों ने सोचा कि बेचारा एक स्थान पर बैठा रहा, ये उसकी झोपड़ी है, कितनी गंदी हो गई है, अब हटाओ इस झोपड़ी को यहां से। उसके वो सारे बर्तन, उसने जो कुछ वहां किया था सब गंदगी है, सबको हटा दो, और सब कुछ हटा दिया गया। फिर किसी ने सुझाव दिया कि वो जो जमीन है वो भी तो गंदी हो गई है, उस जमीन को भी थोड़ा खोद दो। तो कई लोगों ने उसको खोदना चालू किया और खोदने के बाद अवाक रह गए सब लोग, क्योंकि नीचे हीरे जवाहरात गड़े हुए थे। और वो व्यक्ति बस ढूंढता ही रहा, वो व्यक्ति बस भीख ही मांगता रहा, और उसे पता ही नहीं कि जो हीरे जवाहरात, जो वो धन चाहता था, वो उसी जमीन के नीचे गड़ा था जहां पर वो 25 वर्ष तक भीख मांगता रहा। जिस जमीन पर हम हैं वहां पर भी ऐसा ही धन गड़ा हुआ है, परंतु हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। और वो जो धन है, वो जो संपदा है, वो जो संपत्ति है, वो है खुशी की संपत्ति, जो कि बाहर नहीं परंतु हमारे ही अंतस चेतना में छिपी हुई है। तो क्या हम करें कि जीवन इस संपदा से भर जाए? तो इस डिवाइन गूगल ऑफ हैप्पीनेस जैसे उस गूगल के बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्स है। तो आज हम इस खुशी के गूगल के 26 एप्लीकेशन देखेंगे। उनमें से एक भी यदि जीवन में धारण कर लिया जाए तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और यहां आप जो आए हैं वो केवल सुनने मात्र के लिए नहीं, परंतु जो बातें यहां कही जाएगी उनको अप्लाई करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें सुनने से नहीं परंतु करने से जीवन में आती है। अगर वो चीजें हम कर दे तो जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है, जीवन जो भटक गया है, जीवन की राह जो खो गई है, किसी एक साइंटिस्ट ने कहा है आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप थ्रू माई फिंगर्स. सारा जीवन रिसर्च में लगा दिया परंतु अब जीवन के अंत में जीवन की शाम में ऐसा क्यों लग रहा है कि जीवन रिक्त रहा. क्यों ये वैक्यूम, क्यों ये रिक्तता, क्यों ये स्पिरिचुअल वैक्यूम जीवन में आ गई. जरूर कुछ करना था, जरूर कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ. तो वैसे हम जैसे गूगल में कह हम टाइप करते हैं वैसे इस डिवाइन गूगल ऑफ हैप्पीनेस में एक एक अल्फाबेट टाइप करते जाएंगे और उसमें से जो प्रोडक्ट, उसमें से जो कंपोनेंट, उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो ऐप है जो निकलेगा उसको हम अपने जीवन में इंस्टॉल करेंगे. और जैसे ही जीवन में इन 26 में से एक ऐप भी इंस्टॉल हो गया तो जीवन वो नहीं रहेगा जो अब तक था. जीवन परिवर्तन हो जाएगा, अ एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्रियात्मक परिवर्तन जीवन में आएगा. तो इसी परिवर्तन के लिए आप सब यहां पहुंचे. और एक बात, यहां पर आपको लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई इनविटेशन नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं. यहां आने के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है. जन्म जन्म से किए हुए पुण्य कर्मों ने ढकेल ढकेल कर आपको यहां लाया है. इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो आत्मा की जो प्यास थी, जो अंतिम अंश बाकी था, वो अंतिम अंश अब यहां आकर पूर्ण होगा. क्योंकि जिस स्थान पर आप पहुंचे हो ये वो भूमि है जहां परमात्मा प्रेम की तरंगे है, जहां तपस्या की तरंगे है, जहां पर असंख्य आत्माएं आई और जिनका हृदय परिवर्तन हो गया बिना किसी से कुछ पूछे और कहे. सबसे पहला एक एक एप्लीकेशन ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में इसको धारण कर लेना है और ऐसे धारण कर लेना है फिर वो छूटे ना. क्योंकि जो बातें बताई जाएगी हो सकता है शुरुआत में वो कठिन हो परंतु धीरे धीरे वही अमृत बन जाएगी. सबसे पहला ए, इस गूगल में टाइप करना है ए अर्थात अमृत वेला, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागना, अर्थात प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम, सुबह सुबह उठना. यहां की जो दिनचर्या है, जिस आलोक में, जिस क्षेत्र में आपने प्रवेश किया है, ये योगियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, मानसिक वैज्ञानिकों की भूमि है. बहुत समय पहले जस्टिस, चीफ जस्टिस, भारत के जस्टिस एक यहां पर आए थे और उनके जीवन का नियम था वो सुबह 2 बजे उठते थे. अभी अभी जिन्होंने शरीर छोड़ा, 100 से भी अधिक लॉ के ऊपर जिन्होंने किताबें लिखी, यहां कल्चरल प्रोग्राम था तो उनसे कहा गया आप चलिए. उन्होंने कहा माफ कीजिए, मेरा उठने का समय निश्चित है, मैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. He had made that habit of getting up early in the morning. सुबह सुबह उठना, क्योंकि सुबह का वायुमंडल स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है. उस फ्रेश वायुमंडल में जहां पर संसार का डिजिटल वर्ल्ड सोया है कुछ समय के लिए, उस पवित्र वातावरण में उठना, स्वयं से बात करना, स्वयं को खोजना, स्वयं को देखना, सिंहावलोकन करना. सुंदर शब्द है, जैसा सिंह पीछे देखता है अपने जीवन पीछे कौन आ रहा है, वैसे रेट्रोस्पेक्शन करना. उसके लिए द बेस्ट टाइम इज अमृत वेला, जिसे नाम ही कहा है द नेक्टराइन आवर. यदि इस डिवाइन गूगल में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन केवल आनंद ही आनंद और खुशी ही खुशी हो तो सबसे पहली ये धारणा हमें अपने जीवन में लानी पड़ेगी. उसके लिए बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा. ये कमिटमेंट अपने आप से है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो करने बाकी है, जो अब तक हमने नहीं किए हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज ए फॉर अमृत वेला, देख तो लो क्या होता है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, बाद में क्या होता है, हम क्यों करें ये बाद में, एक्सपेरिमेंटेड। A is equal to B, हम चालू करेंगे, A is not equal to B, and let us start the equation. A is not equal to B, A is not equal to B, A is not equal to B. करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ. You will come to some conclusion at some time. यहाँ पर अगले तीन दिनों में आप बहुत सी बातें सीखोगे, जानोगे, समझोगे, सुनोगे. वो बातें केवल सुनने की नहीं है, but they are to experiment rather than to argue, rather than to debate. Sit with impartial mind और देखो क्या कह रहे हैं ये लोग, किस लोक के ये लोग हैं, कौन सी इनकी बातें हैं, कैसी इनकी बातें हैं, पहला अमृत वेला, सुबह सुबह उठने का अभ्यास, जितना जल्दी हो सके उठने का अभ्यास और स्वयं को खोजना। दूसरा बिलीफ, स्वयं में विश्वास, मैं ये कर सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं इस संसार में जो मैं नहीं कर सकता। हम हमेशा उदाहरण देते हैं 1914 थॉमस एल्वा एडिसन, 10 बिल्डिंग्स न्यू जर्सी, सब के सब को आग लग गई, सारा रिसर्च इतना अब तक का किया हुआ, सब कुछ जल रहा है आंखों के सामने। एडिसन का बेटा भाग कर आता है, कहता है पिताजी ये क्या हो रहा है, फिर एडिसन कहता है जाओ अपनी माँ को बुलाओ, ऐसा दृश्य फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा उसको, बुलाओ अपनी माँ को। एंड ही सेज ऑल अवर मिस्टेक्स हैव बीन बर्नड अप, देखो हमारी सारी गलतियां रिसर्च की कैसे जल रही है। ही इज अनअफेक्टेड, उसके बेटे को लगता कैसा बाप है, कैसा साइंटिस्ट है, कैसा वैज्ञानिक है, ये तो हंस रहा है, ये सब कुछ जल रहा है यहाँ पर। एंड विद इन 6 months सब कुछ फिर से निर्माण कर देता है, विद इन 6 months। दैट इज द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं ये कर सकता हूं। उसके बेटे चार्ल्स एडिसन ने 1964 के रीडर डाइजेस्ट में ये अनुभव लिखा, And my father raised everything again. यह विश्वास, स्वयं में विश्वास। विवेकानंद ने कहीं कहा है, स्वामी जी कहते हैं कि if you have faith in 33 millions of God, but if you have no faith in yourself, you cannot achieve success. First have faith in yourself and all the things will be done. सब कुछ अपने आप होगा, मैं ये कर सकता हूं, यह विश्वास। अनंत शक्तियां मुझ में है, Before me the mountains will crumble, I will drink the entire ocean, सारा समुद्र पी जाऊंगा, मेरे सामने सारे पर्वत गिर पड़ेंगे, ऐसा आत्मविश्वास, इतनी शक्ति। उदाहरण दशरथ मांझी, उदाहरण अनुरिमा सिन्हा, और ढेर सारे इतिहास में उदाहरण है जो कि हार गए, थक गए, उदास हो गए और फिर वापस उठ गए, चाहे कितनी भी निराशा के बादल घिर जाए, परंतु आशा का सूरज निरंतर जगा हुआ है। तो यदि ऐसा आत्मविश्वास है, ऐसा बिलीफ है स्वयं में, तो दुख कभी आ नहीं सकता, परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, परंतु हम दुखी नहीं हो सकते। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिनना नखरता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सी क्रिएटिविटी, वही 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 उसी ढर्रे पर यदि जीवन चल रहा है तो उसमें खुशी नहीं हो सकती, जो खुशी है वो भी गुम हो जाएगी। सुबह वही उठना, सुबह वही ऑफिस, सुबह वही सब कुछ, वही 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 वही, क्या इस जीवन में नवीनता लाई जा सकती है, क्या जिस जीवन को नवीनता से, रचनात्मकता से, क्रियात्मकता से भरा जा सकता है, कैन वी क्रिएट न्यूनेस इन लाइफ। उठते ही सोचो आज मुझे क्या नया करना है, कौन सी वो नई पांच बातें जो मुझे करनी है। थिंक ऑफ फाइव न्यू थिंग्स, एलिस इन वंडरलैंड नाम की एक किताब है जिसमें छोटी सी एलिस है, उसके पिता हमेशा कहते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट करने से पहले आई थिंक ऑफ सेवन इम्पॉसिबल थिंग्स। ऐसे कौन से असंभव है जो मैं आज करूं, कौन से नई नवीनता अपने जीवन में लाऊं, अपने सोच में, अपने बोल में, अपने कर्म में, कितना मैं बोल रहा हूं, क्या कोई मौन आ सकता है इस जीवन में, इतना वाचाल। जस्ट ट्राई, नवीनता लानी है। जिस ढंग से मैं चलता हूं, जिस ढंग से मैं खाता हूं, क्या उसमें नवीनता ला सकती है, आ सकती है नवीनता। डी, चौथा ऐप जो जीवन में इंस्टॉल करना है वो है डिजिटल डिटॉक्स, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। इतना घेर लिया है इस डिजिटल ने चेतना को कि स्वयं से बातें करने का उसके पास समय ही नहीं है। माना वो बहुत आवश्यक है, एक बहुत बड़े वेब डिजाइनर ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत प्रख्यात वेब डिजाइनर, वो लिखता है, इफ यू डोंट चेक योर ईमेल्स मेनी मेनी टाइम्स इट डजंट मीन दैट यू विल गेट लेस रिच। एक एग्जीक्यूटिव अमेरिका की एक स्टडी है, उसमें कहा गया है कि एक ऑफिस का एग्जीक्यूटिव एक घंटे में 36 बार अपने मेल चेक करता है। स्क्रीन टाइम ऑल द टाइम अटैच्ड, क्या कुछ समय दिनचर्या का ऐसा निकाला जा सकता है जिसमें हम इस डिजिटल वर्ल्ड से कुछ समय के लिए अपने आप से हो, अपने आप में हो और इससे दूर हो। जैसे उदाहरण है, एक व्यक्ति है, वो रोज रात में सोता है तो उसे अपने बेड के नीचे, अपनी खटिया के नीचे बिच्छू, टिंडन, सांप, मगरमच्छ, खतरनाक जानवर दिखते हैं। सारे हॉस्पिटल में चला गया, सारे डॉक्टरों को मिल लिया, सारी जांच पड़ताल कर ली, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। वो स्वप्न सोता है और स्वप्न आता है, जैसे ही उठता है दुखी, धड़ के साथ। सारे गांव वाले उसके साथ सहानुभूति रखते हैं, और एक दिन अचानक ऐसे होता है कि वो उठता है और बहुत खुशी में झूमता हुआ नाच रहा है। लोग पूछते आज क्या हुआ, वो स्वप्न नहीं आया। वो कहता है स्वप्न गया, क्या इलाज किया। वो कहता है मेरा दूर का एक भाई आ गया है, वो कारपेंटर है, उसने खटिया के चार क्या पैर ही काट दिए। अब खटिया के पैर काट दिए तो उसी के नीचे तो स्वप्न आता था, जब तक ये पैर नहीं कट जाते वो स्वप्न आते रहेगा, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया। जी के नीचे बहुत कुछ पनप रहा है, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए डिटैच्ड, डिस्कनेक्ट, और वो अवसर अभी आपको मिला है। यहां आए हो तो ऐसे जीना है जैसे मैं यहां अकेला हूं, मौन में प्रवेश करना है, यहां कोई नहीं, केवल मैं और मैं। जॉर्ज गुरजीएफ ने एक प्रयोग किया था अपने शिष्यों के साथ, उसने 3 मास के लिए अपने 30 शिष्यों को एक बंगले में कहा कि तुमको इधर ही रहना है, और ऐसे रहना है कि जैसे दूसरा कोई है ही नहीं, एंड इन एब्सोल्यूट साइलेंस। 3 महीने के बाद उन सारे शिष्यों के ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव हुए कि पहली बार उनको लगा कि मैं भी कुछ हूं, हमारा सारा ध्यान दूसरों की तरफ है, दी अदर को देखने में सारा कुछ चालू है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 3 दिन हम किसी और को ना देखे, केवल अपने आप को देखे, मैं कहां हूं जीवन में। उसके बाद में ई फॉर ईटिंग, क्या हम खा रहे हैं, जैसा हम खाएंगे वैसा हम बनेंगे, हमारी खुशी किस ढंग से हम खा रहे हैं, क्या खाते समय प्रसन्नता है, आनंद का भाव है या कंप्लेंट का भाव है, क्योंकि दुखी होकर खाना अर्थात वो भोजन विषाक्त हो रहा है। किस भाव से हम खाते हैं, कितनी एकाग्रता से हम खाते हैं, जब खाए तो ऐसा खाए कि बस खा रहे हैं और कुछ दूसरा नहीं, मल्टी टास्किंग, यहाँ टीवी भी चल रहा है या मोबाइल भी चल रहा है या भोजन भी चल रहा है या बातें भी चल रही है, क्या ऐसा जीवन खुशी का जीवन, खुशनुमा जीवन हो सकता है? जहां एकाग्रता हो ऐसा हमारा जीवन हो, हमारा भोजन भी प्रार्थना बन जाए, एक आनंद का उत्सव बन जाए, इतना खुशी से उसे स्वीकार करना है। यहां जो भोजन आप खाएंगे एक अलौकिक दिव्य शक्ति है उस भोजन में, क्योंकि जो बनाने वाले हैं बहुत अनन्य भाव से, प्रेम से भरपूर है, वो इस भाव से बनाया गया है। और एक चीज स्थान की, आपको ये नहीं समझ में आ रहा इतना बड़ा विशाल संगठन चल कैसे रहा है, कब चाय बन रही है, कब भोजन बन रहा है, कौन किसको कोई ऑर्डर नहीं कर रहा है, चुपचाप अपने आप चल रहा है, यही इस बात का प्रमाण है कि ये जो कार्य यहां हो रहा है ये मनुष्य का नहीं परंतु द वर्क डिवाइन, परमात्मा कार्य चल रहा है। ये किसी आश्रम के रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में कुछ महात्मा लोग यहाँ आए थे और वो कह रहे थे हमारे आश्रम में 500 लोगों का यदि भोजन होता है और उसमें 100 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो हलचल हो जाती है, यहाँ हजारों आ रहे हैं और हजारों जा रहे हैं और कोई हलचल कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। कौन सी शक्ति है, कौन करा रहा है ये, क्या ये मनुष्य की शक्ति है? नो, भोजन को प्रार्थना, भोजन को ध्यान, भोजन को मेडिटेशन बना देना, ये जब होगा तब जीवन में खुशी होगी। ये एप्लीकेशन जीवन में उतारना है, इंस्टॉल कर दो इसको आज से। एफ, फॉरगेट एंड फॉरगिव। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, स्थिर होकर। अब तक जीवन में जो कुछ हुआ, अब तक जो कड़वी बातें जीवन में हुई, अब तक वो सारी आत्माएं, वो सारे लोग जिन्होंने हमें दुख दिया, पीड़ा दी, दर्द दिया, अपमान किया, षड्यंत्र किए, गिराया, आघात किया, हृदय विदीर्ण किया, कब तक हम उनके लिए नफरत लेके चलेंगे? कब तक? यदि आगे बढ़ना है तो हमें उन्हें माफ करना होगा। तो सभी अलर्ट, स्थिर, फिर से एक मेडिटेशन का प्रयोग। मेरी आंखों के सामने आज मैं उन सब लोगों को देख रहा हूं, वो सारी घटनाएं जीवन की जो कड़वी थी, हर्टफुल थी, ट्रॉमेटिक थी, जीवन को जिसने दर्द से भर दिया, उन घटनाओं को देखता हूं और उन व्यक्तियों को भी देख रहा हूं। और इस पवित्र प्रांगण में, इस महातीर्थ में, उनके लिए नहीं परंतु स्वयं के लिए मैं आज उन सबको माफ कर देता हूं। जो बीत गया सो बीत गया, आज से नवजीवन की शुरुआत है। वास्तव में मैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूं। यदि ये घटनाएं ना होती, यदि ये व्यक्ति ना होते जिन्होंने दुख दिया, तो जीवन को मैं वैसे ना समझ पाता जैसे अब समझा है। इन्होंने बहुत मुझे सिखाया है। हे आत्माओं, आप सबका धन्यवाद। मन का भारीपन समाप्त हुआ, एक अलौकिक शांति का अनुभव, अंतर मन की गहरी गांठें खुल रही, संपूर्ण निर्बोध अवस्था। और क्या इन सब ने जो किया वो मेरा ही कार्मिक अकाउंट न था? जो मुझे मिला वही सत्य था, आज मैं निर्भर अवस्था का अनुभव करता हूं, एक परम खुशी का। वो खुशी जो जीवन से लुप्त हो गई थी फिर से लौट आई है। ओम शांति। जी जी अर्थात ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, अहोभाव। जीवन में हर वो व्यक्ति का धन्यवाद जिसने हमारे जीवन को खुशियों से भरा, हर वो व्यक्ति जिसने मेरी मदद की, सहायता की किसी भी तरह से, उनका भी धन्यवाद। जैसे कहा, जिन्होंने दुख दिया, पीड़ा दी, दर्द दिया, यदि वो ये ना देते तो मैं इतना सशक्त शक्तिशाली न बन पाता, क्योंकि अब मेरे पास अनुभव है। किसी एक सूफी संत ने लिखा है, मैं तुमको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए क्योंकि गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की है। धन्यवाद से भर दो जीवन को, सबका धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, भाई बहन का धन्यवाद, मित्र संबंधियों का धन्यवाद, पति पत्नी बच्चों का धन्यवाद, समाज का धन्यवाद, इस देश का, इस राष्ट्र का, इस प्रकृति का, उस परमात्मा का धन्यवाद। धन्यवाद में पॉजिटिव एनर्जी है, थैंकफुलनेस में प्यूरिटी और प्योर एनर्जी समाई हुई है। जैसे ही दिल से धन्यवाद निकलता है, एक ऊर्जा प्रकट होती है चेतना में। एक व्यक्ति यहां आया था, कभी स्मोकर था, चेन स्मोकर, इसी सभा में यहीं पर कभी बैठा। उसको किसी ने कुछ कहा नहीं कि तुम छोड़ दो, पर मौन क्रांति हो गई, अंदर ही अंदर संकल्प कर लिया और छोड़ दिया हमेशा के लिए। कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, शक्तिशाली संकल्प। कितना उसके दिल से दुआएं निकलती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए जो यहां है, क्योंकि ऐसा पवित्र वातावरण और वायुमंडल बनाने के लिए किस थॉट वाइब्रेशन की जरूरत है। यहां का वायुमंडल और किसी रेलवे स्टेशन का और किसी एयरपोर्ट का वातावरण, व्हाट डिफरेंस, अ ग्रेट डिफरेंस यू विल फाइंड। एच हेल्थ, जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है अपनी ही गलती के वजह से, वो नासमझ है, मूर्ख है। स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, और जब मन रुग्ण होता है तब शरीर रुग्ण होता है। पहले रुग्ण चेतना होती है, फिर उसका असर शरीर पे आता है। जरूर कोई संकल्प किया था, जरूर कोई थॉट, कोई इमोशन था जिसने आह्वान किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार। थॉट प्रकृति में गया, सिमिलर थॉट्स को ढूंढा, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, रिएक्शन हुई, विचार विचारों की और घटनाएं निर्माण हुई और बीमारी आई। संपूर्ण स्वास्थ्य को हम अपने संकल्पों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आए इनकल्केट डिवाइन वर्च्यूज, इस ऐप को जीवन में इंस्टॉल करना है। वो कौन सा दिव्य गुण है? डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, एक्यूरेसी है, ओबीडियंस है, स्वीटनेस है, प्यूरिटी है। कौन सा वो दिव्य गुण है जो मेरे जीवन में नहीं है? अगर वो आ जाए और जो मैं दूसरों में देखता हूं कि वो बहुत अच्छा है, किसी को बहुत ज्यादा बात करने की आदत है, और हम देखते हैं जो बात कर रहा है कि दूसरा बहुत शांत है और अपने सारे कार्य कैसे शांति से कर रहा है, क्या वो दिव्य गुणों की मुझ में कभी नहीं? क्या मैं उस दिव्य गुण को धारण कर सकता हूं? अगले 3 दिनों में अपने आप को खोजना है, वो कौन से दिव्य गुण है जो मुझ में नहीं है और जो यहाँ के लोगों में मुझे दिखाई दे रहे। यहाँ का सबसे बड़ा भाषण आपको यहाँ बैठकर जो दे रहे हैं उनके मुख से आप नहीं सुनोगे। सबसे बड़ा भाषण आपको देगा वो व्यक्ति जो किचन में सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति जो झाड़ू लगा रहा है उसको रुको और उसको पूछो तुम यहां क्यों आए, जो उत्तर वो देगा वो सबसे बड़ा स्पीच होगा। वो जिसे कोई नहीं जानता, उसे तो ये भी नहीं पता यहां प्रोग्राम क्या चालू है, वो अपनी सेवाओं में लगा है, कहीं अनाज की सेवा, इतने सारे डिपार्टमेंट्स यहां पर है, सब अपनी अपने सेवाओं में बिजी है। एक शुद्ध भाव है कि सबकी सेवा करनी है बस। And what he will speak will be the greatest of all the speeches. J for journey. एक आंतरिक यात्रा करनी है। बाहर की यात्राएं बहुत कर ली, सारा विश्व घूम लिया, परंतु अंतर की यात्रा भी बाकी है। के से वही है जो इस कॉन्फ्रेंस का थीम है, खुशनुमा जीवन। यहां पर जितनी बातें आपको सुनाई जाएगी, कुछ कुछ बातें नोट करके रखो, कुछ कुछ बातें जो सीधा तीर की तरह अंदर चुभ गई, उन बातों को पकड़ लो, शायद वही जीवन क्रांति का सूत्र बन जाएगा। कुछ कुछ ऐसी पावरफुल बातें यहां पर आप सुनेंगे। और एक दूसरी बात जो यहां सुनेंगे, वो केवल वो नहीं सुनना है जो यहां कहा जा रहा है, दो शब्दों के बीच जो मौन है, दो वाक्यों के बीच जो अंतराल है, स्पीकर उसमें भी कुछ कहेगा, वो सुन लो। एल लव फॉर गॉड, क्या है वो, कौन है वो, कैसा है वो, कहाँ रहता है वो, क्या उसे जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, समझा जा सकता है, क्या वो प्रभु प्रेम फिर से हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो सकता है, यदि हो जाए तो जीवन रूपांतरित हो जाए। लव फॉर गॉड। एम मनन, विचार, रुकना है, बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिया, स्टॉप स्टैच्यू, सोचना है, विचार करना है, कहां हूं, कहां जाना है, अब तक का जीवन जो रहा कैसा रहा, क्या सही दिशा में हूं, कहीं गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गया, एम आई इन द रॉन्ग ट्रेन, स्टॉप, थिंक, रिफ्लेक्ट, कॉन्टेम्पलेट। एन प्रकृति, नेचर, ये जो प्रकृति है, विराट प्रकृति पांच तत्वों की, क्या हमारे पास अपनी दिनचर्या में ऐसा समय हम निकाल सके कि जिसमें हम चिड़ियों की चहचहाट सुने, झरनों का वावास चुने, खलखल निनाद करते वो नदियां, वो पहाड़, उनकी आवाजें सुने। जो व्यक्ति प्रकृति के निकट है वो कुछ और होता है। और जितनी भी क्रियाशीलता, जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी वैज्ञानिक, जितने भी महान आर्टिस्ट, सिंगर, सभी प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति के सानिध्य में जाना, प्रकृति की गोद में बैठना और हियर द सिबिलेंस, हियर द साइलेंस, कैसे सब कुछ हो रहा है, प्रकृति क्या है, क्या रहस्य है प्रकृति का, उस प्रकृति के निकट चले जाना। और जैसे पहला सूत्र बताया, अमृत वेला का समय है जब हम प्रकृति के समीप जा सकते, प्रकृति की वो सारी आवाजें सुन सकते हैं जो कि अंतर मन में गहरा मौन भर देगी। ओ फॉर ऑब्जर्व साइलेंस, मौन। सुबह से लेकर रात तक आवाज 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 आवाज, और जो भी खोजे हुई है संसार में, वो सब संसार की खोजे मौन में हुई है, सेरेंडिपिटी। आर्किमिडिस ने जो ढूंढा वो उस मौन में ढूंढा, मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी, मौन में ढूंढा रेडियम की खोज, बेंटिंग एंड बेस्ट इंसुलिन की खोज 1921 मौन में हुई, किसी अज्ञात क्षणों में अचानक समझ में आया कि कुछ और है, सत्य कहीं और है। पी फॉर प्यूरिटी, यहां क्यों अच्छा लग रहा है, यहां कौन से प्रकंपन है, कौन से वाइब्रेशन है, यहां जो प्रकंपन है वो प्यूरिटी के प्रकंपन है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, आई वॉन्ट 100 पीपल प्योर and sincere to the core, and the world will be transformed. मुझे केवल 100 ऐसे लोग चाहिए जो इतने पवित्र हो, जो इतने शुद्ध हो, जो ऐसे ब्रह्मचर्य की शक्ति से ओतप्रोत है, और संसार को मैं बदल दूंगा. यहां 100 नहीं, हजारों है, और ये उनके प्रकंपन है जिन्होंने अपने जीवन में प्यूरिटी को धारण किया है. इसके लिए उनके शब्द तीर है, वाणी में ओज है और तेज है. क्यू, क्विट ऑल एडिक्शन. संकल्प करना ऐसा, वो कौन सा विकार है, कौन सा एडिक्शन है, कौन सा वो आदत है जो सबसे ज्यादा मेरे जीवन में दुख का कारण है, और इस पवित्र स्थान पर मुझे वो छोड़नी है. हमें याद है MBBS में हमारा एक दोस्त था, वो कहा करता था, मेरी माँ जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाती है एक चीज को छोड़ के आती है. कहीं जाएगी हरिद्वार, जिलेबी छोड़कर आएगी. ऐसी उसकी आदत है. हम सोचते थे कितनी अच्छी आदत है. ऐसे ही यदि हम ये संकल्प कर ले, मेरी ये आदत, ये जो इंटरनेट एडिक्शन, ये जो सर्फिंग एडिक्शन, ये जो सोशल मीडिया का एडिक्शन, ये जो विकार का एडिक्शन जिसने मेरे जीवन को नरक बना रखा है, ये जो व्यर्थ का एडिक्शन जिसने मेरे जीवन को धधकता हुआ रौरव नरक बनाया है, यदि मैं इसको छोड़ दूं तो जीवन कैसा होगा. संकल्प करना है अगले 3 दिनों में. क्यू के बाद आर अर्थात राजयोग मेडिटेशन, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं. इस ध्यान की विधि को सीखना है जो कि सहज है, जो कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कैसे कर सके, वो आप यहाँ सीखेंगे. यहाँ पर सुबह शाम सत्र होंगे, दिन भर में बहुत सारी बातें होगी, और वो सभी बातों में राजयोग मुख्य आधार होगा. चित्त वृत्ति निरोध इति योग, कैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध, कंट्रोल, निग्रह करना, वो यहां सिखाया जाएगा, और सहज रीति से. एस सॉलिट्यूड, एकांत. जैसे कहा, अगले 3 दिन ऐसे समझो कि मैं अकेला हूं, बस इस पूरे हॉल में और कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं. इस पूरे कैंपस में और कोई नहीं है, केवल मैं अकेला हूं. मुझे अपने आप से बात करनी है, कितना कार्य रहा हुआ है, कितनी उलझने हैं, कितनी ग्रंथियां, कितने कॉम्प्लेक्सेस सुलझे हुए हैं, कितना लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कैसे रिलेशनशिप्स में कड़वाहट भर गई है. क्यों? खोज करनी है, अन्वेषण करना है, ढूंढना है. टी, टाइम मैनेजमेंट. यहां बैठकर प्लानिंग करनी है, वहां जाकर क्या करनी है उसकी. यहां बैठकर क्या करना है, प्लानिंग करनी है कि वहां ऑफिस में कैसे मैनेज करना है खुद को, अपने टाइम को, कहां मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. मेक आउट द लिस्ट ऑफ टाइम वेस्टर्स एंड एनर्जी ड्रेनर्स. लिस्ट बनाओ एक टाइम वेस्टर्स की, बातें या मीडिया या व्यर्थ, क्या है जो मेरे टाइम को छीन कर ले जाता है. मेक अ लिस्ट ऑफ टाइम वेस्टर्स. और ऐसा समय और कहीं नहीं आएगा, इतनी शांतता, भीड़ में एकांत, यहां बैठकर ये काम करना है. और कैसे मुझे अपने टाइम को मैनेज करना है, इसकी कला मुझे सीखनी है. यू, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स. मुझे अपने आप को ही समझना है और दूसरों को समझना है. जिस घर में मैं रहता हूं, जिस परिवार में रहता हूं, जो लोग मेरे इर्द गिर्द है, क्या मैंने उनको समझा है, शायद नहीं समझा है. इसलिए ये झगड़े, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए ये टकराव, इसलिए ये मनोमालिन्य, इसलिए उलझन संबंधों में. दो व्यक्ति आपस में टकरा रहे हैं, शब्द टकरा रहे हैं, जो बहुत प्यार करते थे एक समय, आज क्यों शत्रु बने बैठे हैं. कहां पर अंडरस्टैंडिंग मिसिंग हो रही है. टेक ब्रेक, गो इन साइलेंस फॉर सम टाइम एंड देन कम बैक एज फ्रेश. वी, विजुअलाइजेशन. मानस चित्र बनाना है, विजुअलाइजेशन शक्ति है एक बहुत बड़ी. मन की आंखों से देखना, मन की आंखों से. भारत में एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन कभी हुआ है रामानुजन, मैट्रिक में भी फेल था किसी ने कहा, पर मैथ्स में इतना तीक्ष्ण था, इतना तीक्ष्ण था कि किसी ने प्रोफेसर हार्डी को लेटर लिखा और कहा इसको बुलाओ। इसने प्रोफेसर हार्डी को दो एलजेब्रा के स्तंभ लिखकर भेजे और वो स्तंभ देखकर प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसी प्रतिभा का व्यक्ति है, इसने ना तो पढ़ाई की है परंतु यहाँ बोर्ड पर स्तंभ लिखो नहीं और वो उत्तर बताता है। जरूर इसके पास कुछ तो और पावर थी, वो स्पिरिचुअल पावर क्या थी उसकी खोज की गई, देखा गया। 36 एज की उम्र में रामानुजन ने शरीर छोड़ दिया ट्यूबरकुलोसिस से। एक इंसिडेंट है कि हार्डी और उसके मित्र रामानुजन को मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में और रामानुजन कहता है कि आपकी गाड़ी का जो नंबर है उसमें चार रहस्य छिपे हुए, तीन वो बताता है, चार रहस्य है और बाद में शरीर छोड़ देता है। प्रोफेसर हार्डी कहता है अगर रामानुजन ने कहा है तो वो सत्य होगा। आफ्टर 22 इयर्स ही फाइंड्स आउट 3 सीक्रेट्स ऑफ दैट नंबर ऑफ कार ऑफ मैथमेटिक्स एंड ही सेज कि वो जो चौथा है उसकी खोज जारी रहे क्योंकि रामानुजन ने कहा है, क्योंकि वो ऐसी प्रतिभा का व्यक्ति था, ऐसा उसका माइंड काम करता था क्योंकि उस माइंड में एक डिवाइन विजुअलाइजेशन थी, एक पावर थी विजुअलाइज करने की, देख लेना ये होगा और वो हो जाता था। मन की आंखों से देख लेना। हमें याद है हमारे कॉलेज के डीन जो थे डॉक्टर रायचीत, जब रिटायर हो रहे थे और अपना फेयरवेल स्पीच दे रहे थे, कह रहे थे मैं 1960s में इस मेडिकल कॉलेज में आया था और मैंने देखा आते ही फर्स्ट डे एज अ मेडिकल स्टूडेंट जहां रैगिंग का डर है, मैंने ये संकल्प किया कि एक दिन इसी मेडिकल कॉलेज का मैं डीन बन जाऊंगा। एंड ही बिकेम विजुअलाइज, देखा अपने स्वप्न को रोज, देखा पिक्चराइजेशन कलराइजेशन, भरो उसको रोज, देखो आंखों के सामने वो सत्य हो जाएगा, वो साकार हो जाएगा एंड द ड्रीम विल मटेरियलाइज विद द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। डब्ल्यू वॉकिंग, आप में से कितने लोग हैं जो रोज वॉक करते हैं, यहां नहीं घर पर, बहुत कम। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं परंतु मन को फ्रेश करने की दृष्टि से। और जो व्यक्ति रोज वॉक करता है, प्रकृति के सानिध्य में रहता है, मौन में रहता है, एकांत में रहता है, अपने आप से बात करता है और खुशी उसके घर स्वतः आ जाएगी। डिवाइन गूगल ऑफ हैप्पीनेस में एक प्रिंसिपल, एक एप्लीकेशन, एक कंपोनेंट है वॉकिंग, जो हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। या तो सुबह करो या रात को करो। सुबह का समय सबसे अच्छा है जब संसार सोया पड़ा है, प्रकृति के सानिध्य में चले जाना, आवाजें सुनना, समझना। एक्सरे में अपने आप को देखना, रिसर्च योरसेल्फ, फाइंड योरसेल्फ, एनालाइज योरसेल्फ, सेल्फ सर्चिंग, सोल सर्चिंग, आत्म निरीक्षण, आत्म अन्वेषण, आत्म विश्लेषण, सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्म परीक्षण। दूसरों को बहुत परीक्षा परीक्षण कर लिया, खुद का परीक्षण। एक्स वाय योग निद्रा, ये विषय बहुत बड़ा है, इसकी हम यहां चर्चा नहीं करेंगे, परंतु हरेक को ढूंढना है, खोजना है, समझना है योग निद्रा क्या है, सोने की वो कौन सी विधि है जिसमें व्यक्ति 10 मिनट सो जाए और उठने के बाद उसको लगे कि एक घंटा से ज्यादा सो लिया। ऐसी एक विधि है जिसकी आप सबको स्वयं ही खोज करना, लिटरेचर बहुत सारा अवेलेबल है। योग निद्रा, सोते समय कैसे शरीर को रिलैक्स करना, कैसे संकल्प करना, विजुलाइज करना, ब्रेथ कंट्रोल करना और धीरे धीरे सो जाना। और सोते सोते जो संकल्प हम करेंगे, जो विचार हम करेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड में जो जाएगा वो साकार हो जाएगा। ऑल एफर्ट्स आर टू रीच टू एक्सेस दिस सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में जो बैरियर है प्री कॉन्शियस का, रात को सोते समय खुलता है। उस सोते समय जो हम सोचेंगे वो सीधा सबकॉन्शियस में जाएगा और वो करते करते सो जाना। और लास्ट है जेड जील एंथुजियाज्म, उमंग उत्साह। समय पूरा हो रहा है, सभी फिर से अलर्ट होके बैठ जाएंगे, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ नीचे, एकदम रिलैक्स, दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, रेड लाइट, खुशी की ऊर्जा से भरपूर, खुशी की शक्ति से भरपूर मैं एक खुशनुमा आत्मा हूं। खुशी का संगीत, खुशी का वह दिव्य नाद जीवन में गूंज रहा है। खुशी की सुगंध से जीवन भरपूर हो गया है। मैं सुख स्वरूप आत्मा, परम खुशी का अनुभव कर रहा हूं। एक नया मार्ग जीवन ने करवट बदली है। जीवन का नया अध्याय खुला है। जो बातें मैंने यहां सुनी और अब सुनूंगा, जरूर इनमें से कोई एक बात जीवन में क्रांति लाएगी, यही विश्वास मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूं। खुशी के सुगंध से पुलकित आत्मा हूं। मेरा संपूर्ण जीवन खुशी से भर गया है। जीवन का यह महल खुशी के प्रकाश से भर गया है। मेरे संबंध, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरे कार्य, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, कल्पनाएं, स्मृति, स्वप्न, संबंध, सब में खुशी का रंग छा गया है। मैं अत्यंत खुशी का अनुभव कर रहा हूं। ॐ शान्तिः।